हमारे मुल्क में जिस तरीके से ईद हुई, आपके इल्म में एक हिजान की कैफियत, बहुत ताखीर से ऐलान किया गया। ऐलान पर भी लोगों को एतराज़ था। जो साइंस पे यकीन रखते हैं, उनका कहना था कि चांद नज़र आ नहीं सकता। शहादतें कबूल कर ली गईं, और उससे बढ़ के फिर ये हुआ कि कहा गया कि एक रोज़ा जो है वो रह गया, और बाज़ उलमा ने ये फतवा दिया कि अब वो रोज़ा लाजिम तौर पर रखा जाएगा। सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आपको लगता है इस तरीके से ऐलान होना चाहिए था? रियासत की रोयत हिलाल कमेटी की जिम्मेदारी क्या थी? और दूसरी बात, जब ऐलान हो गया तो अभी जो रोज़े की कज़ा का फतवा दिया जा रहा है, आपकी नज़र में इस पर क्या अमल होना चाहिए?
मैं तो अपना मौक़िफ़ कई मरतबा बयान कर चुका हूँ कि ना इस तरह की किसी कमेटी की कोई ज़रूरत है, ना इस नौईयत के ख़लफ़शार की बुनियादें रखनी चाहिए। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में वो असबाब पैदा कर दिए हैं कि अब आप चाँद की पैदाइश के लिहाज से एक कैलेंडर बना सकते हैं, और वो पहले से मुतय्यन कर सकता है कि आपको कब ईद करनी है, कब रमज़ान शुरू करना है। मैं हमेशा से यही राय रखता हूं और इस बात पे इसरार करता रहा हूं कि अब इन चीज़ों से हमको निकल जाना चाहिए। इसके बाद मैंने एक दूसरी तजवीज़ ये पेश की थी कि इस पे भी कोई हर्ज की बात नहीं, और वो भी दर हकीकत दुनिया में इस तरक्की की वजह से हुआ है, साइंसी तरक्की की वजह से, कि अगर आप जज़ीरा नुमाय अरब को, जो ज़ाहिर है कि हम मुसलमानों का रूहानी मरकज़ है, उसी को आप ये इख्तियार दे दें कि वो दुनिया भर के लिए ईद का ऐलान कर दे, रमज़ान का ऐलान कर दे, इसमें भी कोई माने नहीं है। ये मालूम है कि ख़ुद इमाम हनीफ़ा के ज़माने में ये फतवा दे दिया गया था कि एक जगह अगर रोयत हो गई है तो पूरी उम्मत में उसका ऐलान किया जा सकता है, इसमें कोई माने नहीं है। अल्लाह ताला ने एक माह के रोज़े हम पर फ़र्ज़ किए हैं, या मुख्तलिफ़ तारीख़ें मुकर्रर की हैं कोई दीनी इबादत को अंजाम देने के लिए, तो उसमें बस तायीन होती हैं। वो तायीन के जो ज़राए इंसान के पास मौजूद थे उस ज़माने में इख्तियार किए गए, अब हमारे पास दूसरे ज़राए हैं, हम उनको आसानी से इख्तियार कर सकते हैं और इस सूरत हाल से निजात पा सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि इन दोनों चीज़ों को लोग अभी कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। जब वो तैयार नहीं हैं तो जो पहले से एक तरीका चला आ रहा है वो यही तरीका है कि लोग चाँद देखते हैं, यानी एक तरह से ऐनी रोयत होती है, और अगर आपको नज़र नहीं आया तो आप उनकी शहादत पर फ़ैसला करते हैं। जिस ज़माने में ये साइंसी तहकीकात मुमकिन नहीं थी, इस तरह से साइंसी लिहाज से हिसाब के ज़रिए से तय्यन मुमकिन नहीं था, उस वक्त यही हो सकता था। और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई जिससे लोगों को गलतफहमी हुई, वो भी असल में इसी बात का बयान था कि 30 रोज़ों के मामले में तो इल्म बिल्कुल आखिरी दर्जे में पहुँच चुका है। वो इल्म क्या था? लोगों का सदियों का तजुर्बा और मुशाहिदा कि कमरी महीना 30 से ज़्यादा का नहीं होता, तो इसलिए 30 में कोई चांद नहीं देखता, कोई देखता भी नहीं था। हुजूर ने भी यही फरमाया कि 30 पूरे कर लो, उसके बाद रमज़ान ख़त्म करना है करो, रोज़े रखने हैं रखो, जो भी है वो इस इल्म की बुनियाद पर जब 30 पूरे हो जाएं तो हो जाएगा, यहाँ कोई रोयत का सवाल नहीं है। लेकिन अगर चांद नज़र आ गया है और 29 को नज़र आ गया है, तो आपने फरमाया कि अशहर तिस्म वैशू, यानी चूँकि ये बात भी तजुर्बे और मुशाहदे से मालूम हो चुकी है कि कमरी महीना कभी कभी 29 दिन का भी हो जाता है, तो इसलिए चांद नज़र आ जाए तो इसका मतलब है कि अब महीना ख़त्म हो गया या अगले महीने की इब्तिदा हो गई, तो इस पर अमल करना चाहिए। अब चांद 29 पर नज़र ही आ सकता था, कोई दूसरी हिसाबी सूरत मौजूद ही नहीं थी। अब आपके पास वो सारी सूरतें मैसर हैं, और जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, अगर आप उस बात को न भी माने कि चांद की पैदाइश के लिहाज से कैलेंडर बना दें, तो जज़ीरा नुमाय अरब को मरकज़ बना के ऐलान करना मुमकिन हो गया है। ये भी साइंस की तरक्की से मुमकिन हुआ है, वरना मैं आपको अपने बचपन का बताता हूँ कि हमारे गांव से हमारी ननिहाल 24-25 किलोमीटर के फासले पर है, दोनों जगह अलग अलग ही हुई।
अच्छा,
यानी इतने थोड़े फासलों पर भी पैगाम पहुँचाना आसान काम नहीं था। तो कोई जामे मस्जिद है, कोई साहिब इल्म, कोई बड़ा साहिब इल्म है, उसकी तरफ से ऐलान हो गया, किसी जगह पर किसी इलाके के किसी ज़िम्मेदार ने, यानी डिप्टी कमिश्नर ने या किसी और ने ऐलान कर दिया, तो ये मुख्तलिफ तरीके थे जो लोग उस ज़माने के लिहाज से इख्तियार कर लेते थे। आहिस्ता आहिस्ता फिर ये तरीका इख्तियार किया गया कि हर ममलकत अपने नज़म में ख़ुद ऐलान करेगी। हमारे यहाँ भी पहले यही तरीका था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एक रोयत हिलाल कमेटी बन गई। اب جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ایک بار اجتماعی سطح پر کہ ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے وہ فیصلہ کرے گی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کے فیصلے سے اختلاف ہو، یہ ہو سکتا ہے آپ کو بھی اختلاف ہو، لیکن اللہ کے دین کا قاعدہ یہی ہے کہ اجتماعی معاملات میں جب مسلمان کوئی فیصلہ کر لے، یعنی ان کا اجتماعی نظم ہی کرے گا نا، 22 کروڑ لوگ تو بیٹھ کر نہیں کریں گے، جو نظم آپ نے بنا دیا، جب وہ فیصلہ کر لے اجتماعی معاملات میں، ایک وہ معاملہ تھا جو ہمارے انفرادی معاملات مثال کے طور پر ہم کو نماز پڑھنی ہے، ہم کو قربانی کرنی ہے، کوئی اور اس طرح کام کرنا ہے، اجتماعی معاملات میں عید کا اعلان اجتماعی ہے، جمعہ کا اعلان اجتماعی ہے، حج کا اعلان اجتماعی ہے، اسی طریقے سے عید الاضحیٰ ابھی آنے والی ہے، اس کا بھی اعلان اجتماعی ہوگا۔ تو اجتماعی معاملات میں جب کوئی نظم آپ بنا دیں، جو بھی آپ بنا دیں، آپ فیصلہ کر لیں، آپ سائنسی طریقے سے کریں گے، سب کو پیروی کرنی چاہیے، آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ جزیرہ نما عرب کے لحاظ سے کریں گے، سب کو پیروی کرنی چاہیے، آپ نے اب یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آپ کے ملک میں ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، وہ کمیٹی ریاست نے بنائی ہے، یعنی وہ خود بخود نہیں بن گئی، اس کے فیصلے کی پابندی شرعاً لازم ہے۔
ٹھیک،
اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور جب اس کے فیصلے کی پابندی شرعاً لازم ہے تو پھر اس کے بارے میں کوئی تردد بھی نہیں ہونا چاہیے، اختلاف کریں گے، یعنی اگر ہم علمی لحاظ سے اس کے فیصلے کو غلط سمجھتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ غلط بھی کہتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں اس کے اوپر، لیکن وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے رویت حلال کمیٹی نے جو فیصلہ بھی کر دیا وہ سائنسی لحاظ سے میری سمجھ میں بھی نہیں آیا، بہت سے اہل علم کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن وہ ہمارا حق کے اختلاف ہے، وہ اختلاف ہم کریں گے، فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔
ٹھیک،
میں اسی کے لحاظ سے عید کروں گا، اسی کے لحاظ سے رمضان کی ابتدا کروں گا، یہ چونکہ اجتماعی معاملات ہیں اس میں اپنا اختلاف بیان کرنے کا حق ہے، اس میں خلاف ورزی کا حق ہمارے دین میں نہیں ہے، ہر شخص کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے، کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے، یعنی یہ کوئی کام ہی نہیں ہے کہ میں اور آپ شہادتیں لینی شروع کر دیں، میں اور آپ اپنے سائنسی علم کی بنیاد پر فتوے دینا شروع کر دیں، صرف شائستہ اختلاف ہوگا، یعنی بتائیں گے کہ اس فیصلے میں یہ غلطی ہے، یہ بتانا ہمارا فرض بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے، اس لیے کہ فیصلوں پر تنقید ہی سے ان میں بہتری آتی ہے، لیکن فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔
ٹھیک،
کسی شخص کو بھی اس کی خلاف ورزی کا کوئی حق نہیں، عید ہوگی اور اسی دن ہوگی، اور یہی خدائی فیصلہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی قاعدہ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کہ جو چیزیں اجتماعی معاملات سے متعلق ہیں ان میں جب اجتماعی فیصلہ ہو جائے تو ہر مسلمان کو اس کی پیروی کرنی چاہیے، اس میں اگر کوئی اختلاف ہے تو اختلاف کا اظہار کرنے کا ہر آدمی کو حق ہے۔ تو اس لیے میرے نزدیک نہ کوئی روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے، کسی کا کوئی شخصی اطمینان نہیں ہوا، وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، لیکن اس کا اجتماعی اعلان کرنا یا یہ کہنا کہ لوگ روزہ رکھیں، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، جو فیصلہ ہو گیا بس وہ نافذ ہو گیا۔
ٹھیک ہے، ہم سب بہت ہی آپ نے تفصیل سے اظہار کیا، میں آپ نے جو بات فرمائی اس کو ذرا آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک لمبے عرصے تک بڑے ہی جیل قدر عبقری عالم ہیں بریلوی مکتب فکر سے، مفتی منیب الرحمان صاحب، وہ چیئرمین رہے، ہم نے دیکھا کہ ان کو فیصلے سے اختلاف تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اعلان کیا اور عید اسی دن منائی اور اس کے بعد انہوں نے اظہار کیا۔ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک عالم کو تو یہ حق ہے نا کہ وہ اگر سمجھتا ہے کہ ایک فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا، انہوں نے بہت اچھا اسوہ قائم کیا، رویے سے عید پڑھ لی، لیکن ہم اس کا یہ حق تو نہیں لے سکتے کہ وہ دنیا کو یہ پیغام دے کہ ایک چیز کی میرے نزدیک خلاف ورزی ہوئی ہے، لہٰذا آپ کو روزہ پورا رکھنا چاہیے، اس لیے کہ شریعت نے رمضان کا پورا مہینہ روزے کے لیے مقرر کیا۔
نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں آپ فیصلے سے عملاً اختلاف تو نہیں کر رہے، لیکن اپنے نظری اختلاف کو دوسروں کے لیے ایک دینی حکم بنا رہے ہیں۔
اچھا،
یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، ان کا اپنا اطمینان نہیں ہوا تو ان کو حق تھا کہ روزہ رکھ لیتے، لیکن اس کو اعلانات کا موضوع نہیں بنانا چاہیے، بس اتنا کافی ہے کہ میرے نزدیک یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا اور اس کے دلائل دے دینے چاہیے۔ یعنی اجتماعی فیصلے بس جب ہوتے ہیں تو وہ لیٹر اور اسپرٹ میں نافذ ہو جاتے ہیں، ان کی اسی طرح پیروی کرنی چاہیے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ میں جمعہ کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہوں، میں اس کے دلائل دے سکتا ہوں، اور ہمارے آئمہ بھی اس معاملے میں بالکل واضح ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے جہاں جہاں فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھیں گے، میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔
ٹھیک، اچھا یہ بتائیے کہ ہم سر، جب یہ کہا جاتا ہے کہ شہادت قبول کی جائے گی तो हमारी जो फ़िक़ है, जो एक पूरी इस्लामिक जुरिसप्रूडेंस की एक हिस्ट्री है, उसमें भी तो कोई ना कोई कायदा कुलिया मौजूद होगा, या सिर्फ़ एक ज़ुबानी गवाही जो है वो कोई शख्स कहे जी मैंने फ़लाँ जगह पे कोई चीज़ देख ली है, क्या उससे ये नहीं तलब किया जा सकता भी तुमने देखी थी तो कोई वीडियो बनाओ, कोई एविडेंस, यानी सिर्फ शहादत, क्या कौली शहादत है या फ़िक़ के लिहाज से उसमें भी आपको वेरिफिकेशन के अमल से गुजरना है?
नहीं, आपको हर शहादत जिसको कहते हैं तस्किया तो शहूद, वो तो करना ही है, और हम ये तवक्को करते हैं कि ऐसा ही किया गया होगा। अगर खुदा न खास्ता इसमें भी कोताही बरती है तो इस पर भी तनकीद की जाएगी। एक जज फैसला करता है, उसके हर पहलू पर तनकीद हो सकती है। तनकीद को आप हक हासिल है। इसके बारे में मुझे मालूमात नहीं है और मैं इस पर कोई तबसरा भी करना पसंद नहीं करता कि गवाहियाँ कैसे ली गई हैं, उनका तस्किया कैसे किया गया है, उनकी कबूलियत का फ़ैसला कैसे किया गया है। इसमें सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर कोई बात नहीं कहनी चाहिए। वहाँ आखिर कुछ ज़िम्मेदार लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कोई फ़ैसला किया होगा तो गवाहियों की बुनियाद पर फ़ैसला वो कर सकते थे। ये बात अलबत्ता तय है कि अगर मतला साफ हो बिल्कुल, यानी कहीं बादल वगैरह नहीं है, तो उस सूरत में जम्मे गफीर की गवाही पर फ़ैसला करना चाहिए। ये उसूली बातें हैं और बिल्कुल कॉमन सेंस की बातें हैं। इनमें अगर कोई ख़िलाफ़ वर्जी हुई है तो ये वहाँ के लोग बताएँगे। ज़ाहिर है कि वहाँ कुछ साहिब इल्म जमा थे, मुख्तलिफ़ गिरोहों के, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के, मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले। उनमें से सारे के सारे लोग किसी मुनाफ़िक़त पर तो नहीं खड़े होंगे। कोई आदमी बताएगा कि इसमें ये कोताही हुई है, उसके बाद गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन हमारा ये काम नहीं है कि हम सूए ज़न करें और खामखा ये प्रोपेगंडा शुरू कर दें कि ऐसा हुआ है। यही तवक्को करनी चाहिए कि गवाहियाँ ली गई होंगी, गवाहियों पर इत्मीनान किया गया होगा, उसमें कोई गलती भी हो सकती है, उसके बाद ऐलान कर दिया गया। वो ऐलान साइंसी लिहाज से काबिले कबूल नहीं है। ये बात एक दूसरा इल्म हमें बता रहा है, यानी इसके माहिरीन भी यही कह रहे हैं और जो थोड़ा बहुत हम जानते हैं उसकी बुनियाद पर हम भी यही कह रहे हैं। लेकिन ये हमारा इख्तलाफ एक इल्मी इख्तलाफ होगा, इसको अमली इख्तलाफ में किसी सूरत नहीं बदलना चाहिए। यानी ईद पड़ी जाएगी, रमज़ान शुरू किया जाएगा, किसी के रोज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी की ईद में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इज्तिमाई फ़ैसला अल्लाह और रसूल का फ़ैसला है, उस पर सरे तस्लीम खम करना लाजिम है। हम मुसलमानों के लिए हक़ के इख्तलाफ हम रखते हैं।